नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राहुल बनर्जी। राहुल, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
तो राहुल, आईपीएल तो चल ही रहा है, इसके अलावा टेनिस और शतरंज से हमारे पास अच्छी खबर आई है। हालांकि हॉकी के मैदान पे फिर से निराशा मिली है, तो इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल रॉलेक्स मोंटेकार्लो मास्टर्स में 55वीं रैंक वाले फेसुंडो डियाज अकोस्टा को हराकर अगले दौर में पहुंचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में हमवतन विदित गुजराती को हराया। आर वैशाली ने बुल्गारिया के नुर्गुयुल सलीमोवा को हराकर पहली जीत दर्ज की। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिकेट से। आईपीएल क्रिकेट में आज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13वें ओवर में 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। क्या लगता है राहुल, क्या नतीजा रहेगा मैच का?
नहीं, अभी तो आधा भी मैच पूरा नहीं हुआ है, 10-12 ओवर ही हो चुके हैं। और लेकिन नॉर्मल जिस हिसाब से इस साल के आईपीएल की स्कोरिंग की पैटर्न है
जी,
ये काफी धीमी विकेट सी लग रही है, क्योंकि 12-13 ओवर में अगर सिर्फ 90 रन बने हैं
जी,
जब हम अभी मेरे ख्याल से आदत हो गई हमारे की 200 रन मिनिमम देखने की ऑन अ नॉर्मल बेसिस
जी,
तो ये काफी स्लो प्रोग्रेस है। हो सकता है कि पिच स्लो होने की वजह से, और वैसे हुआ तो फिर जब इनकी बारी आएगी खेलने की टाइटन्स की, तो उनका भी यही, उनको भी इसी कंडीशंस में खेलना पड़ेगा। बट इट्स अ स्टेडी स्टार्ट, सिर्फ 2 या 3 विकेट खोए हैं, तो इसका मतलब कि उनके पास बैटिंग अभी भी बहुत है। लास्ट के 5 ओवर में हालात बहुत जल्दी बदल सकते हैं
जी,
तो अगर किसी ने लास्ट 2 ओवर में 50-60 रन इन्होंने मार दिए, तो फिर आप देखिए स्कोर काफी बढ़ सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक क्विंटन डिकॉक 6 रन बना के और देवदत्त पड्डीकल 7 रन बना के आउट हुए हैं, जबकि केएल राहुल 33 रन पर और स्टोइनिस 41 रन पर खेल रहे हैं।
ये दोनों बैट्समैन बल्लेबाज जो हैं, इनकी काबिलियत यह है कि बहुत ही जल्दी गेम को पलट सकते हैं। राहुल और स्टोइनिस दोनों ही बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन हैं और उनको अनुभवी भी हैं, तो दे नो हाउ टू पेस एन इनिंग्स। और अभी ऐसा मैं लाइक आई सेड, क्वाइट पॉसिबल कि आखिर के 4-5 ओवर में देखेंगे कि उन्होंने 70-80 रन मार दिए, तो अब 200 के वैसे, जैसे हम बात कर रहे थे, 200 के वैसे भी पहुंच जाएगा क्या?
जी 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 बिल्कुल। लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है फिलहाल आईपीएल में, और 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में वैसे ही वो 4थे नंबर पर हैं, जबकि गुजरात टाइटन्स 4 में से 2 मैच जीतकर 7वें स्थान पर हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात जब आ रही है, आजकल तो मयंक यादव के बिना कोई भी बातचीत पूरी हो नहीं रही है।
एक्चुअली बोला जाए तो, देखा जाए तो बहुत ही रेयर फाइंड है
जी,
और अभी इस वक्त जब इतने नए हैं उनके अपने करियर में, तो मेरे ख्याल से दोनों उनके टीम और इंडियन बोर्ड को थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जल्दी ना करें
जी।
हड़बड़ी में ज्यादा जल्दी खिलाने की जरूरत नहीं, लड़के को डेवलप होने दीजिए, उसको स्ट्रांग होने, इज क्वाइट यंग, अभी 20-21 साल का ही है
जी,
तो उसके हमारे इंडियंस के वैसे भी मैच्योरिटी जरा लेट ही होती है हर चीजों में
जी,
सो होपफुली दे विल टेक दैट टाइम, और धीरे धीरे जब तैयार होगा उसको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाएंगे
जी। बिल्कुल। और आज हुए एक अन्य मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 235 रन का लक्ष्य दिया था। मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 49 रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 10 गेंदों पर नाबाद 39 रन की पारी खेली। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर 42 रन और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 39 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 8 विकेट खोकर 205 रन ही बना पाई। मुंबई इंडियंस की ओर से क्वेजी ने 4 विकेट लिए। तो पहली जीत फाइनली
आईपीएल के ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि ये अगर आप देखें फॉलोइंग के तौर पे देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस और चेन्नई, ये सबसे तीन बहुत बड़ी फॉलोइंग वाली टीम्स हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
और अभी लगातार 3 मैच हारने के बाद सभी सोच रहे हैं क्या हो गया मुंबई को। और सबसे मेरे को अच्छा लग रहा है बेचारे हार्दिक पांड्या, जो नई नई कप्तानी लेके आए हैं, वो बहुत ही उनका बहुत ही बुरा हाल था।
बिल्कुल।
तो इट्स अ बिग रिलीफ। और अगर आप ये मैच का पैटर्न देखें, आखिर के जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आखिर के ओवर तक ठीक ठाक चल रही थी दिल्ली
जी।
उनका जो मेन बॉलर है उन्होंने मेरे ख्याल से 30 रन के आसपास आखिर ओवर में दिए, जो लास्ट में जाके वॉज ऑलमोस्ट द मार्जिन ऑफ डिफीट।
जी बिल्कुल।
तो बहुत जल्दी ऐसे मैच पलट सकते हैं। और जब मुंबई की टीम इतनी पावरफुल, अगर आप पेपर पे कागज पे देखें तो बहुत ही स्ट्रांग टीम है।
बिल्कुल बिल्कुल।
और फाइनली जैसे अब पहले 7 बल्लेबाजों में मेरे ख्याल से 5 जनों ने अच्छे रन बनाए, तो ऐसी स्थिति में अगले टीम के लिए आप चुनौती पेश करोगे ही करोगे। और ये बात यही भी है, दूसरी बात है कि दिल्ली हर साल प्रॉमिस करती बहुत कुछ
जी।
लेकिन लास्ट में जाके हम लोग भी दिल्ली वाले, हम भी दिल्ली के फैन ही हैं, हम बड़े निराश हो जाते हैं।
जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस जीत के साथ, जबकि मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 8वें स्थान पर आ गई है। काफी निराश थे प्रशंसक मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन से अभी तक। क्या लग रहा है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो कहीं ना कहीं असर डाल रहा था?
टीम में इतनी क्वालिटी है, कहीं ना कहीं वो उभर आएगी। अब पिछले साल भी अगर आप देखें, इनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, पहले 3-4-5 मैचों में वो काफी हार चुके थे
जी।
उल्टे तरफ देखें, राजस्थान ने एकदम फ्लाइंग स्टार्ट ली थी, पहले जीतते ही गए, फिर एकदम से उनकी जीत का जो करीब जो है बिल्कुल बंद हो गया।
सो
ये बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, पहले 4-5 मैच के ऊपर आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ट्रेंड नहीं बना सकते हो। सो डेफिनेटली मुंबई हैज, उनकी क्वालिटी बहुत है, कहीं ना कहीं वापसी तो होगी। और जैसे अभी उन्होंने, अब जीतना भी एक आदत सा हो जाता है जब आप, लेकिन पहली बार जीतना पड़ता है, अब जीत चुके हैं। एंड देन आई थिंक अब जिस तरह उनकी रिसोर्सेज है, जिस तरह के प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा जैसे कप्तान जो भारत की इतनी बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं, उनके इनपुट्स भी होंगे जरूर हार्दिक के पास, तो पलट इनके तो रास्ता तो पलटेगा ही।
ऑलरेडी तो ऐसी है, पर माहौल ऐसा लग नहीं रहा है कुछ। हालांकि पिछले जब भी आईपीएल हुए हैं उनमें भी मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि शुरुआत थोड़ी धीमी रहती है उनकी, और फिर उसके बाद वो रफ्तार
पिकअप जरा धीमे करते हैं, लेकिन करते हैं।
जी जी। और कल चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक खबर और आई हमारे पास, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को इस साल जून में होने वाली पहली महिला महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के आइकन खिलाड़ियों में जगह मिली है।
बधाई उनको। अभी आप देखें तो स्मृति के पास एक बहुत बड़ी कहने वाली बात है कि उनके मेंस टीम 10-12-16 साल से खेल रही है, वो नहीं जीत पाए, और बेंगलोर की महिला टीम जो है दूसरे साल में ही टाइटल जीत के चली गई है।
जी बिल्कुल।
तो जरूर उनके पास कुछ, विराट कोहली को भी दिखाने के लिए पूछेगी, विराट पूछेगी भी आपके पास तो ट्रॉफी नहीं है, मेरे पास है।
जी बिल्कुल। और लग रहा था शायद उस प्रदर्शन से इन पर भी कुछ असर आएगा, पर अभी दिख नहीं रहा है वो। अब हमारे पास हम चलते हैं हॉकी की तरफ, जहां से आज फिर से हमें निराशा मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया है। कल हुए पहले टेस्ट में भी भारत को 5-1 से हार का सामना करना पड़ा था। आइए सुनते हैं शक्ति की ये रिपोर्ट।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज हॉकी टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया से 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। पहले क्वार्टर में 2 गोल किए गए। शुरुआती गोल करने के लिए दोनों टीम ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी और 5वें मिनट में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। 6वें मिनट में जेरेमी हेवर्ड ने पेनल्टी को गोल में बदल दिया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद जुगराज सिंह ने अपनी टीम के लिए 90वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला गोल दागा और स्कोर को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। भारत ने दूसरे गेम की शानदार शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने अटैक करना जारी रखा, लेकिन भारत ने मजबूत डिफेंस के दम पर उनकी गोल करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 30वें मिनट में ड्रैग फ्लिक से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। इसी के साथ भारत ने इस क्वार्टर में अपना दूसरा गोल दाग कर पहले हाफ की समाप्ति पर 2-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में स्कोर बराबर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त हासिल करते हुए 4-2 कर दिया। वहीं भारतीय टीम ने अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई। ऑस्ट्रेलिया ने गोल करने के लिए लगातार सफल मौके बनाए। 34वें मिनट में जेरमी ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद 42वें मिनट में जैकब एडरसन ने और 45वें मिनट में नाथन एफ्रामस ने फील्ड गोल करते हुए अपनी टीम को 4-2 से आगे कर दिया। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने वापसी करने की कोशिश की और शुरुआत में ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन उसे गोल में बदलने में नाकाम रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4-2 के साथ दूसरा मैच अपने नाम किया और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। शक्ति प्रताप सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो राहुल, पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। 43 मैच अब तक खेले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें से भारत ने केवल 8 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 28 मैच जीत चुका है। तो क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए एक मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है कहीं?
कुछ हद तक तो वो है ही जरूर, और उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग, फिटनेस, काफी बातें हैं। स्पीड खेलने की, आजकल के मॉडर्न हॉकी इतना फास्ट हो गया है कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ फिटनेस की जरूरत होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लड़के कम काम कर रहे हैं या कसरत कम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो रह ही जाता है। और जैसे आपने कहा, एक मेंटल ब्लॉक, एक दरार टाइप का, एक टीम हमारे यार उनके साथ कैसे, तो हो सकता है कि ये मेंटली टीम कुछ पहले से ही थोड़ी सी वीक हो जाती है
जी।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, ओलंपिक्स कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है
जी, बिल्कुल। और दोनों टीमें एक ही ग्रुप
पहले
में।
इट इज बेटर टू लूज देन विन। तो अगर आप हार में आप ज्यादा सीख सकते हो, तो अगर इन सब रिवर्सल से अगर हमारी टीम कुछ आगे बढ़ सकती है ओलंपिक्स में जाके, जहां असली हिसाब वहीं होता है
जी, बिल्कुल,
तो मैं मानता हूं ये कोई बुरा बात भी नहीं
जी, बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं शतरंज से, जो अच्छी खबर हमारे पास आई है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कैनेडियन शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में हमवतन विदित गुजराती को हराया। प्रज्ञानानंदा की बड़ी बहन आर वैशाली ने भी बुल्गारिया के नुर्गुल सेलिमोवा को हराकर पहली जीत दर्ज की। महिला वर्ग में सिर्फ इसी मुकाबले का नतीजा निकला है। कोनेरू हम्पी ने सफेद मोहरों से खेलते हुए चीन की टैन झोंगे को बराबरी पर रोका है। पुरुष वर्ग में डी गुकेश रूस के मजबूत डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे हैं। पुरुष और महिला वर्ग दोनों में 8-8 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, और इस डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अभी 11 दौर का खेल बाकी है। इसके बाद हम चलते हैं टेनिस की ओर, जहां से सुमित नागल ने एक और अच्छी खबर दी है हमें। भारत के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल आज अर्जेंटीना के 55वीं रैंकिंग वाले फेसुंडो डियाज अकोस्टा को 7-5, 2-6, 6-2 से हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स के अगले दौर में पहुंच गए हैं। अच्छी खबर है
जी
सुमित,
जब से ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने मेन ड्रॉ में पहुंचे और फिर वहां में एक सीडेड प्लेयर को हराया
जी,
तो मेरे ख्याल से उनकी जो वर्ल्ड रैंकिंग जो है 100 के अंदर आ गई है। अभी भी मेरे ख्याल से 95 में चल रहे हैं, विच इज वेरी गुड न्यूज
जी।
और एक राउंड अगर और जीत जाए फिर यहां पे भी मोंटे कार्लो में भी मेन ड्रॉ में पहुंच जाएंगे
जी, बिल्कुल,
जो मेरे ख्याल से 40 साल के ऊपर कोई भारतीय खिलाड़ी पहुंचा नहीं है
जी।
और जिस तरह उनकी अभी तक प्रोग्रेस रही है, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। अब अगर अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी को हराया आखिर जो राउंड में, उनके एक और मेरे ख्याल से अर्जेंटीनी खिलाड़ी उनके सामने रहेंगे कोरिया, तो उस अगर इसी हिसाब से खेलें तो मेरे ख्याल से सुमित की प्रोग्रेस जो है हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है इस साल और आगे बढ़ते रहेंगी
जी, बिल्कुल। तो हम श्रोताओं को बता दें कि कल पहले क्वालिफाइंग राउंड में भी उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त और 63वीं रैंकिंग वाले इटली के फ्लाविओ कोबोली को हराया था। लगातार सीडेड प्लेयर्स को हरा रहे हैं, लेकिन कई बार अगले राउंड में उनका थोड़ा प्रदर्शन,
देखिए जैसे हर स्टेप आप आगे चलते हैं कॉम्पिटिशन उतना बढ़ता रहता है और उतना ही मुश्किल हो जाता है खेलना
जी।
क्योंकि जो भी पहुंचा या तो अपने रैंकिंग के हिसाब से पहुंचा है या वो खुद भी ऐसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जीत के पहुंचा है
जी,
तो मुश्किल तो होता ही रहता है
जी।
तो और आशा है कि वो चलते रहेंगे
जी। तो अब समय हमें इशारा कर रहा है कि अब प्रोग्राम को खत्म किया जाए, तो कल हम फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राहुल, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।